नारायणं नमस्कृत्य
नरं
चैव
नरोत्तमं
सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु
नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके
भक्तिर्भवति नैष्ठिके
ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम चौथा स्कंद चौदहवां अध्याय राजा वेन की कथा श्लोक संख्या 30। वेन उवाच बालिशापत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः ये वृत्तिदं पतिं हित्वा
जारं पतिमुपासते
वेन उवाच बालिशापत यूयं वा धर्ममानिनः
ये वृत्तिदं पतिं हित्वा
जारं पतिमुपासते वेन उवाच बालिशापत यूयं वा अधर्मे धर्ममानिनः
ये वृत्तिदं पतिं हित्वा
जारं पतिमुपासते
वेन उवाच
बालिशापत यूयं वा
अधर्मे धर्ममानिनः
ये वृत्तिदं पतिं हित्वा
जारं पतिमुपासते
वेन उवाच
बालिशापत यूयं वा
अधर्मे धर्ममानिनः
ये वृत्तिदं पतिं हित्वा
जारं पतिमुपासते
वेन उवाच
बालिशापत यूयं वा
धर्मे धर्ममानिनः
ये वृत्तिदं पतिं हित्वा
जारं पतिमुपासते
वेनः
राजा वेन ने
उवाच
उत्तर दिया
बालिशाः
बच्चों जैसा
बत
यूयं
तुम सब
वा
निस्संदेह
अधार्मिक नियमों में
धर्ममानिनः
धर्म मानते हुए
तुम सब जो
वृत्तिदं
पालन करने वाले
पति को
हित्वा
त्याग कर
जारम
परपति को
पतिम पति को
उपासते
पूजा करते हैं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा अनुवाद। राजा वेन ने उत्तर दिया तुम तनिक भी अनुभवी नहीं हो। यह अत्यंत दुख की बात है कि तुम लोग जो कुछ करते रहे हो वह धार्मिक नहीं है। किंतु तुम लोग उसे धार्मिक मान रहे हो। दरअसल तुम लोग अपने पालनकर्ता वास्तविक पति का त्याग कर रहे हो और पूजा करने के लिए किसी जार या परपति की तलाश में हो। तात्पर्य, राजा वेन इतना मूर्ख था कि उसने मुनियों को बच्चों के समान अनुभवहीन कह डाला। दूसरे शब्दों में वह उनको सही ज्ञान न होने का दोषी बता रहा था। इस प्रकार उसने उनके उपदेश को अस्वीकार करके उनके विरुद्ध दोषारोपण किया कि वे उस स्त्री के समान हैं जो अपने पालनकर्ता पति की परवाह न करके जार पति को प्रसन्न रखती है जो उसका पालन नहीं करता है। इस उपमा का मंतव्य स्पष्ट है। क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वे ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के धार्मिक कार्यों में लगाएं और राजा को ब्राह्मणों का पालक माना जाता है। यदि ब्राह्मण राजा को न पूछकर अन्य देवताओं के पास जाएं, तो वे उतने ही दूषित हैं जितने कि कुलटा स्त्री। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप पदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साम्प्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनि नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो वेन उवाच, वेन का भाषण शुरू हो गया। और आजकल वेन के अनुयायी बहुत सारे हैं। इस दृष्टि से कि वेन की विचारधारा को मानने वाले बहुत लोग हैं आजकल। और वो विचारधारा क्या है कि भगवान नहीं है, शास्त्रों का कोई मतलब नहीं है, मैं नेता हूँ, मैं जो कहूँगा वही ठीक है और वही धर्म है। और आगे चल के विस्तृत रूप में वेन इस विचारधारा को समझाएंगे मुनियों को। वास्तव में भूमिकाएं पलट गई हैं। ब्राह्मणों को और मुनियों को चाहिए कि वो राजा को उपदेश दें, न कि राजा मुनियों को उपदेश दे। मुनियों ने तो प्रयास किया उपदेश देने के लिए, परंतु राजा वेन जैसा कोई दुष्ट हो तो वो सुनता नहीं है, उल्टा वो मुनियों को उपदेश देता है। तो जब ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि जिनसे हमें सुनना चाहिए हम उनसे नहीं सुनते हैं और अपने आप को ही सब कुछ मानते हैं और ये सोचते हैं कि हमें किसी से सुनने की या जानने की आवश्यकता नहीं है, मेरी विचारधारा ही सब कुछ है, तो फिर समस्या हो जाती है। वैसे वेन तो एक राजा था, परंतु जो लोग राजा नहीं हैं, जिनको राजा का पद नहीं है, मानसिकता से वो भी राजा है, अपने आप को वो राजा ही समझते हैं। राजा मतलब कौन है? जो राज्य करता है, जो दूसरे के ऊपर जमाने का कोशिश करता है ना, यही तो राजा है, सबका पालन करता है। तो सभी लोग सोचते हैं कि मुझे राज्य करना है, तो सारे जीवों की बीमारी यही है ना? कि हम अपने आप को राजा समझते हैं, अर्थात मुक्ता समझते हैं, और इसलिए हम लोग यहाँ भगवान को नहीं मानते हैं, भगवान से हम स्पर्धा करना चाहते हैं कि भगवान ही अकेले भोक्ता क्यों, मैं भी तो भोक्ता हूँ, मैंने सब कुछ किया है, तो फिर भगवान का क्या स्थान इसमें? मुझे याद नहीं है कि मैंने ये अपना एक अनुभव आप सबको कहीं कभी किसी दूसरे प्रवचन में बताया होगा या नहीं, फिर भी बताऊंगा। जब मैं नया ब्रह्मचारी था और एक बार हमारे जन्माष्टमी के उत्सव के लिए मैं लक्ष्मी दान कर लेने के लिए सब जगह गया था, तो मैं एक ऐसे स्थान में गया जहाँ पे बहुत वो व्यापार का स्थान है, तो बहुत सारे दुकान वगैरह वहाँ पे हैं। तो मैं हर एक मेरे हमारे मंदिर के रसीद बुक लेकर मैं जाता था और हर एक से वो पर्ची दे के जन्माष्टमी आदि के फिर कुछ दान दीजिए बोल के आता था। थोड़े लोग अच्छे थे, स्वागत करते थे, लेकिन थोड़े लोग स्वागत नहीं करते थे, दरवाजे से बोल देते थे नहीं 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 जाओ जाओ, जैसे मराठी में बोलते हैं ना हकलून टाकला, ऐसे ठीक ठीक जैसे भिखारी को कहते हैं ऐसे करके बोलते थे। तो मुझे गुस्सा तो आता था उस समय, हम लोग मैं तो बहुत जवान भी था, गुस्सा भी बहुत आता था, लेकिन प्रभुपाद की बात याद आई कि जो भिक्षा मांगने जाता है उसको अभिमान नहीं होना चाहिए। हाँ, और फिर याद आया कि भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में एक राजा की बात आती है, राजा ऋषभदेव की ही है, ये भागवत में बात आती है कि जब उन्होंने राज्य को त्यागा तो वो अपने शत्रुओं के राज्य में जाके भी भिक्षा मांगते थे और सभी लोग उनकी निंदा करते थे, उपहास करते थे, परंतु वो इसके परे थे, उनको कुछ परवाह नहीं थी इस बात की। उसी तरह से प्रभुपाद जी बताते हैं कि लाला बाबू नाम के एक भक्त थे, वो कलकत्ता से आए थे, मारवाड़ी एक व्यापारी थे, बहुत बड़े व्यापारी थे कलकत्ता में, लेकिन कृष्ण की भक्ति में इतनी रुचि लग गई उनको कि उन्होंने अपना व्यापार व्यापार सब छोड़ दिया। करोड़ों रुपए थे उस टाइम में, उस समय वो छोड़ के वृंदावन में आए और उन्होंने जाके सब जगह भिक्षा मांगना शुरू किया और लोग कभी कभी अपमानित भी करते थे उनको, लेकिन उन्होंने सहन किया और फिर वहीं रहे। और आज भी मथुरा वृंदावन के तट पे एक बड़ा मंदिर है जिसको लाला बाबू मंदिर बोलते हैं उनके पीछे, क्योंकि फिर उनके नाम में एक मंदिर बना बाद में, भगवान कृष्ण का मंदिर। तो ये सब चीज़ें फिर मुझे याद आई कि फिर ये भी है कि तपस्या क्या होती है। तपस्या भगवद गीता में प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे कई नियमों का पालन करना जो हमें अच्छा भी नहीं लगे परंतु जो आवश्यक है तो करना चाहिए। उसी प्रकार से एक शिष्य को चाहिए कि वो गुरु के लिए जाके दक्षिणा मांगे जगह जगह से और पिता के आश्रम चले। और कभी कभी लोग देते हैं नहीं देते हैं, फिर भी शिष्य को सहन करना चाहिए। तो ये सब मन में रख के मैंने सहन किया। फिर एक दुकान में गए तो उसने अंदर ही आने नहीं दिया, तो ऐसा एक सिक्का उसके पास था, उसने ऐसा फेंका, हट हट करके बोल दिया मुझे, तो 10 पैसा था 10 पैसा का सिक्का ऐसे करके फेंक दिया, हट बोल के, हट हट जैसे कुत्ते को बताते ना वैसे। बहुत गुस्सा आया लेकिन फिर भी निकल लिया ऐसा करके उस समय नए भक्त भी थे, उस समय उम्र भी बहुत कम थी, तो गुस्सा तो बहुत आया। लेकिन फिर जो भी हमने सीखा था, पढ़ा था, सुना था, उसको थोड़ा ऐसा ऐसा करके सर को दबा के थोड़ा स्वीकार करके हम चले गए। आजकल परिस्थिति बहुत बदल गई है, आजकल इतना नहीं होता है। पहले हम लोग जब जाते थे, जब मैं सड़कों पे जाता था रेलवे स्टेशन में वगैरह, कई लोग ऐसे बहुत मजाक उड़ाते थे हम लोगों का। और मैं जब ब्रह्मचारी बना तो उसके लगभग कई साल पहले, कितने साल पहले कुछ याद नहीं है लेकिन कई साल बीत गए थे, एक सिनेमा आया था हरे कृष्ण हरे राम बोल के, एक सिनेमा आया था हरे कृष्ण हरे राम बोल के। तो ऐसे लोग बोलते कि उसमें उन्होंने वो जो लोग चरस वगैरह पीते हैं उनको दिखाया कि वो कैसे पी रहे हैं, ऐसे ऐसे करके पीते हैं और फिर वो हरे कृष्ण हरे राम बोल रहे हैं। तो गाना भी था, वो बहुत प्रसिद्ध हो गया ऐसे बोलते। तो जब मैं, मुझे अभी भी याद है, रेलवे स्टेशन पे मैं था प्रचार के लिए कहीं जा रहा था, तो कोई लड़के वहाँ थे खड़े थे, तो ऐसे करके बोले हरे कृष्ण हरे, ऐसे करके मेरा मजाक उड़ाने लगे। तो ऐसे अभी सहन करना पड़ता है ना, अभी क्या करेंगे। तो अभी गुस्सा भी करेंगे तो बोलेंगे साधु को गुस्सा नहीं करना चाहिए, साधु को सहन करना चाहिए। लेकिन आजकल सब ज़्यादातर लोग सम्मान करते हैं क्योंकि परिवर्तन काफ़ी हो गया है वातावरण में। लेकिन उस समय ऐसे बहुत कुछ होता था। तो खैर, अभी ये सब हमको जानना चाहिए कि हम अभी किसके लिए आए हैं। हम राज करने के लिए आए कि मैं ही सब कुछ हूँ? तो वो आदमी जिसने 10 पैसा फेंका उसने तो नहीं, लेकिन इसके पहले जो आदमी था उसने मेरे से बात करना शुरू किया कि ये भगवान भगवान क्या है, सब कुछ मेरे शक्ति से चलता है, ये सब जो मैंने इतना बड़ा खड़ा किया दुकान क्या भगवान ने किया, मैंने दिन रात मेहनत करके किया, मेरे बुद्धि का प्रयोग करके किया, और कितना कुछ परिश्रम करना पड़ता है इसके लिए। दूसरे लोग देखो, उनके नहीं हुआ इतना बड़ा दुकान, वो फेल हो गया, उसने किया उसका नहीं हो गया, मैंने किया मेरा। अभी जब ऐसी भावना में कोई होता है तो उसको उपदेश देना व्यर्थ है। जैसे प्रभुपाद भी बोलते हैं कि चाणक्य पंडित बोलते हैं कि एक जिस प्रकार से एक सांप को दूध पिलाने से उसका जहर बढ़ जाता है, तो एक दुष्ट व्यक्ति को या जिसको बहुत गुस्सा वगैरह आया है उसको उपदेश देने से उसकी उसके उसका उसकी बुद्धि और भ्रष्ट हो जाती है, वो स्वीकार नहीं कर सकता, वो और गुस्सा हो जाता है, फिर और गाली गलौज करने लगता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि इसको कुछ समझाएं तो क्या समझाएं, लेकिन ये मानसिकता है लोगों की। सब मैं ही हूँ, मैं नियंता हूँ, मेरी वजह से ये सब हो रहा है, मेरे परिवार का भरण पोषण करने वाला मैं हूँ, मेरे व्यवसाय को ये सब करने वाला मैं हूँ, और जो थोड़ा ऊंचे पद में रहता है वो सोचता है मैं नेता हूँ इसका, सारे प्रजा मुझ पर निर्भर है। तो इस तरह से ये सब अहंकार के रूप है, अज्ञान के रूप है, और लोग ऐसे गलत समझते हैं और भूल जाते हैं कि भगवान यदि चाहे तो एक क्षण में उनका सब कुछ खत्म हो सकता है। लेकिन जब भोग और ऐश्वर्य से मन भरा हुआ होता है, अहंकार से मन भरा हुआ होता है, तो अच्छे उपदेश ग्रहण करना संभव नहीं है। तो भगवान का उपदेश नहीं सुन सकता वो व्यक्ति, उसके लिए असहनीय हो जाता है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया बहिर्गतेषां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। तो भगवान के लिए वो विचार नहीं आ सकता है। तो इस तरह से देखा जाए तो वेन की जो विचारधारा है वो बहुत प्रचलित है सब जगह, ऐसे नहीं कि केवल राजा लोगों को है, सब लोग को है। इसलिए तो हम यहाँ पर आए हैं, तो हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि ये केवल वेन राजा की बात है, ये हम सबकी बात है। हम सबके अंदर वेन का छोटा अंश है, छोटा या बड़ा मध्यम जो भी है, किसी के अंदर थोड़ा ज्यादा है, किसी के अंदर थोड़ा कम। हाँ, तो जब हम वेन को देखते हैं तो हमें ये जानना चाहिए कि वेन एक ऐतिहासिक व्यक्ति था, और ये जो भी बताया गया है ये एक ऐतिहासिक घटना है, और इसको बताने के पीछे कारण क्या है। कारण है कि इससे जो उपदेश हमको ग्रहण करना चाहिए वो महत्वपूर्ण है। वैदिक काल में राज ऋषि हुआ करते थे, जो राजा थे और ऋषि भी थे। आप राज ऋषियों के उदाहरण ले सकते हैं, कोई नाम ले सकते हैं राज ऋषियों के? युधिष्ठिर
महाराज,
युधिष्ठिर महाराज और
अम्बरीश,
अम्बरीश
महाराज,
अम्बरीश महाराज और
ऋतु महाराज,
ऋतु महाराज,
ध्रुव महाराज,
ध्रुव महाराज, दशरथ महाराज, प्रियव्रत महाराज, भरत महाराज। तो बहुत बड़े बड़े राजाओं का उल्लेख है, बल्कि साधुओं से ज्यादा भागवत में हम देखते हैं राजाओं का उल्लेख है। इतने सारे राजाओं के नाम आपने लिए, और भी कई राजा हैं, सत्यव्रत राजा है, कितने राजा हैं, उनमें से अधिक जितने भी राजा हुए राज ऋषि थे। थोड़े राजा वो वेन के मित्र थे, मित्र अर्थात विचारधारा एक होने के, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिपु, शिशुपाल, ऐसे दुष्ट राजा भी थे, परंतु अच्छे अच्छे राजा भी थे। तो हम देखते हैं कि इतिहास में और शास्त्रों में भी हमें दोनों प्रकार के उदाहरण किसी भी चीज़ के लिए दिखाई देते हैं, तो हमें दोनों प्रकार के उदाहरणों को समझना चाहिए। सकारात्मक चीज़ को जानना चाहिए, नकारात्मक चीज़ को भी जानना चाहिए। जैसे कि जो भक्ति के लिए अच्छे हैं चीज़ें उनको जानना चाहिए, कि हमें क्या करना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो जैसे ब्रजवासी ने क्या किया, पांडवों ने क्या किया, तो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हम जान सकते हैं कि अच्छी चीज़ें कौन सी हैं जो हम कर सकते हैं अच्छे उदाहरणों को देखकर हमारी भक्ति में आगे प्रगति करने के लिए। दूसरी ओर हम ऐसे भी उदाहरण देख सकते हैं जो कि नकारात्मक है, इनको भी देखना पढ़ना इनके बारे में सुनना भी आवश्यक है, क्योंकि इनसे हम शिक्षण प्राप्त कर सकते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, जैसे दुर्योधन आदि। तो युधिष्ठिर महाराज के चरित्र को समझना उतना ही आवश्यक है जितना कि दुर्योधन के चरित्र को समझना। तो दोनों उदाहरण हमारे पास सामने हैं, इसलिए राजा वेन के उदाहरण को भी समझना जरूरी है, क्योंकि हमें पता चलेगा कि हमें कैसे नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए ये जानना है, और कैसे नहीं होना चाहिए ये भी जानना चाहिए, दोनों चीज़ें। इसलिए शास्त्रों में दोनों प्रकार के उदाहरण दिए जाते हैं। ये बात हम पहले भी एक बार कह चुके हैं, जो प्रसिद्ध श्लोक है, स्मर्तव्य सततम विष्णु हो विस्मर्तव्यो न जात उचित सर्वे विधि निषेधास्योर एतयोर एव किंकरः। तो इसका अनुवाद कौन बता सकते हैं? ये श्लोक सुना है ना आप में से, कितने भक्तों ने सुना है ये श्लोक? तो कौन बताएंगे इसका अर्थ? हाँ, थोड़ा जोर से ताकि सब लोग सुन सके।
स्मर्तव्यम सततम विष्णु, हमें सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए।
इतना भगवान काली का, भगवान दुर्गा का, किसका?
भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहिए।
स्मर्तव्य सततम
विष्णु,
विष्णु विष्णु या कृष्ण का स्मरण सतत करना चाहिए। और
विस्मर्तव्यम न जातुचित,
विस्मर्तव्यो
न जातुचित,
न जातुचित मतलब
हमें कभी भी भगवान विष्णु को बोलना नहीं चाहिए। सर्व विधि से दो चार एक योग एवं किंकर, ये नियम पालन करने से सारे नियम जो है वो सारे नियम इसमें आ गए।
तो वैदिक शास्त्रों में जितने भी नियम बताए गए हैं वो सारे नियम इन दो नियमों के दास हैं, सेवक हैं, किंकर हैं। कौन से दो नियम हैं? कि हमें भगवान का स्मरण सदैव करना चाहिए, और दूसरा भगवान को कभी भूलना नहीं चाहिए। तो ये बताइए कि दोनों चीज़ बताने का क्या मतलब है? कोई एक चीज़ बताने से हो जाता है ना काम? हमेशा भगवान का स्मरण करो, इतना बोलना पर्याप्त था ना? फिर कभी भगवान को भूलो नहीं भूलने की क्या जरूरत है? दोनों का मतलब एक ही है, हर समय भगवान का स्मरण करो और कभी भगवान को भूलो नहीं, मतलब तो एक ही है ना?
नहीं
नहीं, कैसे?
स्मर्तव्यम सततम विष्णु मतलब जैसे भागवत विधि हो गया, नाइन प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। विस्मर्तव्यम में जाते मतलब पंचरात्रि का विधि हो गया या वैदिक विधि हो गया, जो डायरेक्ट डिवोशनल सर्विस नहीं है बट हमें भूलने ही नहीं देता। पंचरात्रि का विधि और वैदिक विधि जैसे यज्ञ करते हैं, ये सब चीज़ें करते हैं, वो डायरेक्ट भगवान के प्रति डिवोशनल सर्विस नहीं है बट हमें भूलने नहीं देता भगवान को। इट्स नॉट इन द निगेटिव जोन, न्यूट्रल।
नहीं ठीक, ऐसा नहीं। और कोई बताएंगे? हाँ, इससे और ये थोड़ा जटिल हो गया। सिंपल सरल बात,
स्मर्तव्यम विस्मर्तव्यम विधि फॉलो करने से हमको स्मरण होगा, जो विधि जो मत करो उसको जब हम नहीं करेंगे तभी भी स्मरण होगा। तो जो चीज़ को हमको मना किया है वो नहीं करने से हमारा स्मरण शक्ति और अच्छा होगा, जो विधि बोला है करने के लिए उससे भी हमारा स्मरण होगा।
तो इसलिए दोनों भी स्मर्तव्य, तो इसके लिए हमको भी हेल्प होगा, कभी भी भगवान को भूलना नहीं है, तो ये दोनों इसके लिए हमको दिया है।
ठीक है, और सरल करके देता हूँ, किसी को कोई रोग हो जाता है और डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको कुछ आदेश देता है, दो प्रकार के आदेश डॉक्टर देता है, कौन से हैं ये दो प्रकार?
क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए,
क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना, केवल खाने की बात नहीं, वो इतना भी बता सकता है कि सोना खाना पीना जो भी कुछ करना है, कसरत नहीं करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ठीक है। तो डॉक्टर दो प्रकार के आदेश देता है, एक कि ये सब करना है, दूसरा ये सब नहीं करना है, ये सब करने से क्या होगा, बीमारी ठीक हो जाएगी, और ये सब नहीं करने से क्या होगा, बीमारी पड़ेगी नहीं, याद कर, समझ रहे हैं आप? ये कौन समझाएंगे अभी? दो प्रकार के आदेश डॉक्टर देता है, ये सब करो ये सब नहीं करो, तो करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या होगा? हाँ सूरज, बीमारी बढ़ेगा नहीं। तो जो उस पहले को बोलते हैं विधि और दूसरे को बोलते हैं निषेध, विधि निषेध, विधि मतलब ये करो ये करो ये करो, निषेध मतलब ये मत करो मत करो मत करो, ठीक है। तो विधि का पालन, वैसे भी भक्ति भक्ति मार्ग में भी विधि होते हैं और निषेध होते हैं। विधि क्या है, कोई उदाहरण दीजिए हमारे भक्ति मार्ग में।
16 माला जप करना,
कम से कम 16 माला जप करना,
भागवत
श्रवण करना, कीर्तन करना, अर्चा विग्रह की सेवा करना, है कि नहीं? ये सब किसके उदाहरण है?
विधि,
विधि भक्ति के विधि है ये, क्यों हमको करना है, जप करो, प्रसाद पाओ, दर्शन भगवान का करो। और निषेध कौन से है?
चार
नियम, जैसे जुआ नहीं खेलो, व्यभिचार नहीं करो, मांसाहार नहीं करो, ठीक है। तो विधियों का पालन करने से क्या लाभ होता है? भक्ति बढ़ती है, विधियों का पालन करने से भक्ति बढ़ती है, और निषेधों का पालन करने से क्या होता है? पतन नहीं होता है, हम गिर नहीं जाते हैं, भक्ति से दूर नहीं चले जाते हैं। यदि हम जप आदि सब कर रहे हैं और नियमों को भी तोड़ रहे हैं साथ साथ, तो क्या होगा? जैसे हम आग लगा रहे हैं चूल्हे में, तो पानी भी डाल रहे हैं, आग लगाओ पानी डालो, आग लगाओ पानी डालो, फिर कोई मतलब हुआ उसका, है ना? तो कोई पूछेगा कि आप करना क्या चाहते हो, आप आग जलाना चाहते हो, बुझाना चाहते हो, कि क्या करना चाहते हो? उसी तरह से हम लोग विधि का पालन भी करेंगे परंतु निषेध का पालन नहीं करेंगे, तो क्या होगा, नुकसान हो जाएगा। तो विधि का पालन करने से भक्ति बढ़ती है, और निषेधों का पालन करने से हमारे भक्ति से हम पतित नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति निषेधों का पालन नहीं करता है, तो फिर वो भक्ति भी करना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो विस्मर्तव्य स्मर्तव्य सततम विष्णु हो, मतलब विधियों का पालन करना। विस्मर्तव्यो न जातुचित, कि कभी भगवान को नहीं भूलना, मतलब निषेधों का पालन करना। निषेधों का पालन नहीं करेंगे तो हम भगवान को भूल जाएंगे। समझ गए आप? कौन समझाएंगे इस बात को? अभी 2 मिनट से कौन समझाएंगे? 2 मिनट तो क्या? बोलो कोई। हाँ वैदेश्वर बोलो जोर से।
विधि मतलब जो नियमों को हमें पालन करना है, निषेध मतलब जो नियमों को, जो कार्यों को हमें नहीं करना है। तो विधि मतलब भक्ति में प्रगति करने के लिए तो कम से कम 16 माला का जप करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, संग कर भक्तों का संग करना चाहिए। और निषेध मतलब उन कार्यों को नहीं करना चाहिए, जैसा व्यभिचार नहीं करना चाहिए, मांसाहार नहीं करना चाहिए, नशापान नहीं करना चाहिए, जुगाड़ नहीं करना चाहिए। तो विधियों का पालन करने से हमारा भक्ति में वृद्धि होता है, और निषेधों का पालन करने से हमारा भक्ति से पतन नहीं है।
हाँ, यदि वर्जित कार्यों को करेंगे तो क्या होता है?
पतन,
भक्ति से पतन नष्ट हो जाता है ना? हमारी भक्ति भावना नष्ट हो जाती है। भक्ति नहीं नष्ट होती, भक्ति है अपने आप, हमारी भावना भक्ति की नष्ट हो जाती है। इसलिए उसी प्रकार से जब हम अच्छे उदाहरण देखते हैं तो हमें पता चलता है कि विधि कौन सी होनी चाहिए, हमारे लिए अनुसरणीय चीज़ें कौन सी होनी चाहिए, किन चीज़ों का पालन हमें भी करना चाहिए, कौन से गुण हैं जो हमको भी प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। हाँ, ऐसे महान भक्तों में हम देखते हैं। जब हम ऐसे बुरे उदाहरण देखते हैं तो हमें पता चलता है निषेध कौन से हैं, कौन से चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। वेन की जैसे सोचना नहीं चाहिए, वेन की विचारधारा गलत है। हाँ, और ध्रुव महाराज की विचारधारा या प्रह्लाद महाराज की विचारधारा सही है, इसलिए दोनों विचारधाराओं का वर्णन श्रीमद् भागवत में पाया जाता है। इसलिए जितना आवश्यक है प्रह्लाद महाराज की कथा सुनने के लिए भागवत में, उतना ही आवश्यक वेन की कथा सुनना भी है, क्योंकि विधि निषेध सकारात्मक नकारात्मक दोनों हमें जान लेना चाहिए, क्या अच्छा क्या बुरा। केवल अच्छा जानेंगे और ये नहीं जानेंगे कि बुरा क्या है तो क्या होगा, बुरे को अच्छा मान लेंगे, और कभी कभी जो वास्तव में अच्छा है उसको भी बुरा मान लेंगे। तो ये अच्छा बुरा जो है इसको क्या बोलते हैं? धर्म और अधर्म। बस अच्छा ये बताइए कि क्या अच्छा है और बुरा है, इसका निर्णय कौन करेगा?
भगवान।
हाँ,
शास्त्र।
शास्त्र जैसे दुनिया में हम देखते हैं लोगों को मतभेद बहुत होते हैं। कोई कहता है ये अच्छा है, दूसरा व्यक्ति कहता है नहीं ये बुरा है, तो कौन निर्णय लेगा? अभी साधारण हमारे समाज में, देश में जब ऐसे कोई वाद होता है तो क्या करते हैं लोग? अदालत में जाते हैं। तो न्यायाधीश देखता है, क्या देखता है न्यायाधीश? किस आधार पर निर्णय लेता है? किस आधार पर निर्णय लेता है न्यायाधीश? जो कानून कायदा है, जो राज्य ने देश में बना हुआ जो कानून है, उसके आधार पर वो निर्णय लेता है कि कौन सही है कौन गलत है। बराबर। तो ठीक इसी प्रकार से ये सारे संपूर्ण सृष्टि हर एक की विचारधारा अलग अलग हो सकती है, परंतु सही क्या गलत क्या उसके लिए भगवान ने एक व्यवस्था की है, उसको बोलते हैं धर्म। धर्म का अर्थ केवल इतना नहीं है कि कोई मुसलमान है, हिंदू है, ईसाई है, ये ऐसा नहीं। धर्म मतलब वो सिद्धांत जो कि संपूर्ण सृष्टि के लिए आधार है। धारयति इति धर्मः। धर्म ये शब्द धृ धातु से आता है, जो धारण करता है। तो इस संपूर्ण सृष्टि के पीछे बहुत नियम है, ये कई सिद्धांत हैं जिससे कि ये सृष्टि चल रही है। जब ये संपूर्ण सृष्टि के जो नियम है वो मनुष्य व्यवहार में, मानवीय इस समाज में लागू होते हैं, तो उसको धर्म बोलते हैं। और इसकी स्थापना कौन करते हैं? मूल रूप से भगवान करते हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म क्या है और अधर्म क्या है, इसकी स्थापना केवल भगवान करेंगे, हम और आप नहीं कर सकते। जिस प्रकार से देश में क्या कायदा होना चाहिए वो हम और आप नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में बोलते हैं कि कोई एक व्यक्ति ने गुनाह किया है और उसको अदालत में बुलाया जाता है, और वो व्यक्ति जाके न्यायाधीश से कहता है कि मान्यवर, आप जो भी निर्णय लेंगे मेरे कार्य के बारे में, आप मेरे इस ग्रंथ को पढ़ के निर्णय लीजिए। मैंने भी एक कानून का ग्रंथ लिखा है, मैंने अपने कानून बनाए हैं, तो इस कानून को पढ़ के फिर आप निर्णय लो। तो कोई न्यायाधीश मानेगा? न्यायाधीश क्या बोलेगा? अपना कानून अपने पास रखो, मैं कौन सा कानून का पालन करूंगा?
देश
का कानून। उसी प्रकार से हम और आप धर्म का विश्लेषण, धर्म की का निरूपण नहीं कर सकते या धर्म का आविष्कार नहीं कर सकते, वो केवल भगवान कर सकते हैं। और फिर भगवान अपने ऐसे शक्तिशाली प्रतिनिधियों को भेजते हैं जैसे मनु हैं या अन्य ऐसे बड़े ऋषि मुनि हैं जो कि ऐसे धर्म शास्त्र लिखते हैं जिसमें बताया जाता है कि कैसे व्यक्ति को मनुष्य समाज में रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो बहुत ऊपर ऊपर के जो चीज़ें हैं वो ऋषि मुनि सब बताते हैं, मूल सिद्धांत भगवान बताते हैं। फिर उनका पालन अलग अलग परिस्थितियों में कैसे करना चाहिए, इसके लिए सब बड़े बड़े ऋषि मुनि सब होते हैं। तो ये धर्म है और इसके विरुद्ध जो भी है वो अधर्म है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि कलयुग में ऐसे एक प्रचलित होगी धारणा कि ये जो चीजें जो अधर्म है उसको धर्म मानेंगे और जो धर्म है उसको अधर्म मानेंगे। तो राजा वेण भी ऐसे ही थे। राजा वेण को पता नहीं था कि धर्म की स्थापना केवल भगवान कर सकते हैं। उसने अपना धर्म बना लिया और सोचा कि मेरा धर्म का पालन करना चाहिए। तुम लोग ऋषि मुनि ब्राह्मण कौन हो? तुम मेरे ऊपर निर्भर हो, मैं तुम्हारा भरण पोषण करता हूँ, मैं तुम्हारा रक्षक हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, उल्टा तुम आके मुझे उपदेश देते हो। अहंकार, मैं तुम्हारा पालन करता हूँ, रक्षा करता हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए, मेरी सेवा करनी चाहिए। बल्कि वैदिक सभ्यता और धार्मिक मूल जो उसूल है, मूल्य है, वो ये है कि हरेक व्यक्ति को ऋषि मुनियों के महान भक्तों की बात माननी चाहिए, गुरु साधु शास्त्र की बात माननी चाहिए, राजा को भी मानना चाहिए। कोई भी स्वतंत्र नहीं है इस दुनिया में। इसलिए बड़े बड़े जो राज ऋषि हुआ करते थे, जैसे दशरथ महाराज इत्यादि, उनके भी सलाहकार सभा हुआ करते थे। ये सब ब्राह्मण ऋषि आदि, इनसे राजा सलाह लेते थे कि ऐसी परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। जैसे अम्बरीश महाराज ने ब्राह्मणों से सलाह लिया जब दुर्वासा मुनि आए थे ना, फिर सलाहकारों ने उनको उपदेश दिया कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। तो ऐसे ही हुआ करता था, ऐसे होना चाहिए, परंतु आजकल ऐसे नहीं होता है। जो तथाकथित राजा होते हैं वो मनमाने ढंग से करते हैं, वेन की तरह। जो स्वार्थी होते हैं, अहंकारी होते हैं, अज्ञानी होते हैं, धर्म क्या है उनको पता नहीं होता है। इसलिए वेन की कथा विशेष रूप से कलयुग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ वेन की विचारधारा बहुत अभी ज्यादा फैली हुई है। तो इसलिए यहाँ पर राजा वेन उनको बोल रहे हैं कि आप एक ऐसे स्त्री के समान हो जो अपने पति को छोड़ के किसी दूसरे पुरुष के पास जाके रक्षा की अपेक्षा करती है, जबकि पति है जो उसकी रक्षा करेगा। और आप सब मेरे पास आके मेरी स्तुति करने के बजाय आप किसी दूसरे के पास जा रहे हो। भगवान भगवान कौन है? मैं ही रक्षा करने वाला, तो इसलिए मुझे छोड़ के दूसरों के पास जा रहे हो, ये बिल्कुल गलत है। और तात्पर्य में तो ऊपर जी क्या बताते हैं, इस तरह से राजा वेन उल्टा ब्राह्मणों को ही दोष देते हैं और उनको ही डांटते हैं। ऐसा साहस कभी किसी को नहीं करना चाहिए। तो कौन है जो बोलते हैं कि मैं युद्ध में भी जाके बहुत कुछ सहन करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ब्राह्मणों के या संतों के क्रोध को मैं नहीं सहन कर सकता, इसलिए ये मैं गलती कभी नहीं करूंगा।
राजा रहुगण।
तो इस तरह से जो महान भक्त होते हैं उनकी आदेशों के अनुसार हमें चलना चाहिए, वेन की विचारधारा त्यागनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो कोई प्रश्न आदि है?
महाराज जी के क्लास में दो एक आपने एग्जाम्पल दिया कि तीन लोगों से हमें इग्नोर करना चाहिए, अगर वो बहुत ज़्यादा विरुद्ध है हम जो विचारधारा के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरा, वेन महाराज ब्राह्मणों से नहीं सुनना चाहते थे, तो उससे रिलेटेड प्रश्न है महाराज कि प्रभुपाद अपने बुक्स में फ्रिक्वेंटली एक चीज़ बोलते हैं कि वुमन आर लेस इंटेलिजेंट एंड नॉन ट्रस्टवर्दी, ये दो शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जब कभी भी ट्रेन में हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते हैं या जब बाहर के लोग कुछ हमारा लिटरेचर पढ़ते हैं, तो नॉन डिवोटीज का पर्सपेक्टिव उसके बारे में अलग ही रहता है, बिकॉज फेमिनिज्म वगैरह ये सब जो मूवमेंट है वो सब की वजह से, तो उनको प्रति हमारा रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए अगर कोई जीनियनली क्वेश्चन पूछ रहा है तो? और दूसरा,
ठीक है, एक के बाद एक से करते हैं। प्रश्न ये है कि शास्त्र में कभी ऐसे कहा जाता है या प्रभुपाद जी कहते हैं कि महिलाओं की बुद्धि कम होती है, तो इसके बारे में हमें कैसे सोच समझना चाहिए, या जब कोई लोग हमको पूछे तो कैसे जवाब देना चाहिए? ऐसी बात नहीं है, प्रभुपाद जी ने अपने व्यवहार से दिखलाया, सबके प्रति समान भाव उन्होंने रखा, और उनके कितने महिला शिष्य थे, शिष्या थी, उन सब का उन्होंने कैसे ख्याल रखा, सबका कितना सम्मान किया, तो ऐसे कोई बात नहीं, व्यवहारिक दृष्टि से कोई बात नहीं। जहाँ तक ये कम बुद्धि होने की बात है, ये इस दृष्टि से हमें समझ लेना चाहिए कि जो महिलाएं होती हैं वो थोड़े भावुक होती हैं, और भावुक इमोशनल, तो भावुक होने के कारण तो उनकी जो एक विवेक बुद्धि हो सकती है वो थोड़ा कभी कभी विचलित हो जाती है अपने भावनाओं के कारण। और बुद्धि का कर्तव्य होता है विवेक, भेद करना, सत्य क्या, असत्य क्या, सही क्या, गलत क्या। लेकिन इसके लिए, इस बुद्धि में जब भावना, इमोशन, भावनाओं का मिश्रण हो जाता है तो व्यक्ति फिर डावाडोल हो जाता है। इस दृष्टि से इसको हमें समझना चाहिए, इस दृष्टि से नहीं है कि सोचने के ढंग में माताएं कम श्रेणी की हैं। वैसे देखा जाए तो बहुत सारे पुरुष इतने बुद्धू हैं, है कि नहीं, सही क्या सामने होते हुए उनको समझता नहीं। हम कितने ऐसे गृहस्थ भक्तों को जानते हैं जो माताओं की बुद्धि के कारण परिवार चल रहा है, वो पति बिल्कुल बुद्धिहीन है, और वो माता सही होने के कारण, बुद्धि उसकी अच्छी होने के कारण, और उसका भी स्वभाव अच्छा होने के कारण, चरित्र अच्छा होने के कारण वो सब कुछ संभालती है। कितने बार ऐसे देखते हैं गांव में, तो भरे पड़े ऐसे उदाहरण सारे भारत में। क्या होता है, वो आदमी जाके शराब पी के पड़ा रहता है, कमाता नहीं, कुछ नहीं करता है, फिर पत्नी को जाके सब घर संभालना पड़ता है, वो जाके नौकरी करेगी, ये करेगी, वो परिश्रम, बच्चों को भी संभालेगी, घर में भी रसोई करेगी, घर को साफ करेगी, बच्चों का देखभाल करेगी, और आदमी क्या करेगा, जाके शराब पीता रहेगा। तो कहाँ उसकी बुद्धि? तो हमको सही दृष्टि से ये समझना चाहिए, ऐसे समझाना चाहिए, ठीक है ना?
हमारा दूसरा प्रश्न, एक साधक ब्रह्मचारी को जनरली बताया जाता है कि जब जैसे हम यात्रा में जाते हैं, राघवनाथ महाराज की यात्रा, तो अगर वुमन डिसाइपल अगर कक्षा दे रही है, तो उस समय एक साधक ब्रह्मचारी का सुनने का जो कॉन्शियसनेस होना चाहिए, या मतलब क्या उसके लिए एक रूल्स एंड रेगुलेशन है,
मतलब कोई माता जी प्रवचन दे रही है तो क्या करना चाहिए?
और दूसरा एक प्रश्न ये है कि अगर माता जी सन्यासी है,
सन्यासी कोई नहीं है माता जी, कौन है सन्यासी? माता जी सन्यासी कौन
है? अभी महाराज वो रिजोल्यूशन पास कर,
सन्यासी के लिए नहीं, हो
गुरु,
गुरु के लिए, सन्यासी के लिए नहीं।
तो उनको फिर पंचांग प्रणाम ऑफर करना चाहिए या?
देखो, वैष्णवता एक ऐसी चीज है, हम चींटी को भी प्रणाम कर सकते हैं, तो माता जी को क्यों नहीं कर सकते? जो भी वैष्णव है, भक्त है भगवान कृष्ण के, क्यों नहीं समान, यदि हमसे बहुत वरिष्ठ है, श्रेष्ठ है, तो अवश्य करना चाहिए, उसमें क्या समस्या है, कोई समस्या नहीं, हाँ ठीक है। और कोई किसी को प्रश्न?
मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा था कि विधि और निषेध, विधि यानी कोई जप करता है और किसी जो नौ विधा अन्य उसको पालन करता है, और निषेध है वो भक्ति में, भक्ति से जो विमुख जो कार्य है उसको नहीं करता।
हाँ, भक्ति से हमको जो दूर ले जाएंगे वो कार्य उनको नहीं करना।
मैं मेरे पिताजी के संदर्भ में मैं उनसे चर्चा कर रहा था कि वो सिगरेट पीते हैं और मैं बोल रहा था कि वो सिगरेट नहीं पिए, ये अच्छा नहीं है, लेकिन वो जब करते हैं दोनों माला जब करते हैं भागवत करते हैं तो वो कहते हैं कि मैं सिगरेट अभी छोड़ना चाहिए, सिगरेट नहीं पीऊँगा तो फिर मेरा पेट साफ नहीं होता, ये प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम होता है, तो फिर ये बैलेंस कैसे कर सकते हैं ऐसे लोग जितने सालों से 50 साल से सिगरेट पी रहे हैं तो उसको तुरंत मैं छोड़ नहीं सकता, अभी वो छोड़ूंगा तो शरीर के साथ ही जाएगा।
नहीं, अभी ऐसे लगता है उनको कि नहीं छूटेगा, लेकिन सिगरेट से भी ज़्यादा बड़े नशीले पदार्थ है जिसको भक्त लोग जो लोग करते थे नशापान, उन्होंने भक्ति में आने के बाद छोड़ दिया। सिगरेट तो छोटी चीज़ है, उससे भी बहुत बड़े बड़े और नशे की चीज़ें हैं, मादक द्रव्य हैं ऐसे। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में गए थे तो वहाँ के तरुण तरुणियाँ सब ऐसे ही सब करते थे ना, वो सब पहले हिप्पी लोग थे तो ये सब करते थे, शराब आदि पीते थे, तो फिर छोड़ दिया उन्होंने सब कुछ भक्ति में आने के बाद। तो भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि हमारे पूर्व पहले के जितने भी बुरी आदतें थी वो सब छूट सकती हैं, परंतु हमारी भक्ति इतनी ही तीव्र होनी चाहिए। यदि भक्ति तीव्र नहीं है तो वो आदतें नहीं छूटेंगी। उतना अच्छा संग हमको चाहिए, उतनी अच्छी साधना हमारी चाहिए, ये सब होगा तो ये सारे चीज़ें आसानी से छूट जाएंगी। जिसकी साधना ठीक नहीं है उसकी चाय कॉफ़ी भी नहीं छूटती। भारत में मैं सोचता हूँ सिगरेट से ज़्यादा समस्या चाय की, लोग चाय नहीं छूटता लोगों का, और गांव में वगैरह जाए तो तंबाकू खाना वगैरह वो सब नहीं छूटता। मुझे याद है कई साल पहले आमटे में हमारे भक्तों ने एक नाटक किया था, विष्णु प्रसाद प्रभु और उनके भक्तों ने साथ में, वो नाटक में मैंने प्रवचन दिया, उसके बाद फिर ये नाटक हुआ। तो नाटक का शीर्षक कुछ ऐसा था, सिगरेट पीने के फायदे, ये नाटक का शीर्षक था, ठीक है। तो सबको बड़ी जिज्ञासा हुई कि अरे ये क्या एक ये कैसा। तो मुझे अभी पूरा देखता हूँ पूरा याद आता है कि नहीं, तो फिर वो नाटक में क्या दिखाते हैं कि एक तरुण है वो ऐसा सिगरेट पीते पीते आता है, असली में सिगरेट नहीं पी रहा, ड्रामा में ऐसे नाटक करता है पीने का। वो हमारे कौन निक जी के
गोपी रमन
ऐसा करके सिगरेट पीते पीते आ रहे थे, और हमारे विष्णु प्रसाद प्रभु वो एक भक्त की भूमिका में थे। तो आते हैं इधर तो भक्त उनसे बोलते हैं हरे कृष्णा, अरे हरे कृष्णा कैसा है क्या चल रहा है ऐसे ऐसा रूप बोलते हैं, और फिर उसके मुंह में भक्त के मुंह में सिगरेट का धुआं, फिर वो भक्त विचलित हो जाता है, अरे अरे क्या करते हो क्या करते हो, अच्छा तुमको अच्छा नहीं लगता है सिगरेट। बोले सिगरेट बहुत अच्छी चीज़ है जिसके बहुत फ़ायदे हैं। तो वो तरुण को आश्चर्य होता है, फायदे है, मैंने सोचा कि अब हरे कृष्ण वाले हमको डांटने वाले कि सिगरेट छोड़ो, नहीं नहीं बल्कि फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। अच्छा मैं चार फायदे बताऊंगा। अच्छा बोलो कौन से फ़ायदे हैं। हाँ, तो बोला पहला फ़ायदा ये है कि तुम्हारे घर में चोर नहीं आएंगे, सिगरेट पीने से घर में चोर नहीं आएंगे, ऐसे कैसे होगा? क्योंकि तुम सिगरेट पियोगे तो तुम्हारे फेफड़े खराब हो जाएंगे, तो तुम खांसी होती रहेगी तुमको, रात भर खांसते रहोगे, तो चोर बाहर से आके आवाज़ सुनेगा घर के अंदर सब खांसी तो जगे हुए हैं, तो चोर अंदर आएगा नहीं, है ना? तो ऐसे हो जाएगा। तो फिर दूसरी बात, क्या किसी को याद है क्या?
बूढ़ा बन आएगा।
हाँ, तुम बूढ़ा नहीं बनोगे, तुम सिगरेट पियोगे तो फायदा है कि तुम बूढ़ा ही नहीं बनोगे। अरे ऐसे कैसे हो सकता है बूढ़ा नहीं बनोगे? तो हाँ, क्योंकि सिगरेट पी के तुमको कैंसर हो जाएगा, युवा अवस्था में ही मर जाओगे, तो बूढ़ा होने का सवाल ही नहीं। हाँ, तीसरा फायदा ये है सिगरेट पीने का कि तुम सड़क में जाओगे तो कुत्ता तुम्हारा पीछा नहीं करेगा। क्यों?
लगड़ी हाथ में।
क्यों?
क्यों?
जल्दी जीवित भी रहोगे तो जल्दी बूढ़े हो जाओगे, खांसी खांसी से छड़ी रहेगी हाथ में, लाठी, वो लाठी को देखकर कुत्ते दूर रहेंगे। और चौथा फायदा क्या है? भूल गया, कुछ था ऐसा। हाँ, तीन ही फायदा, ऐसे और भी फायदे।
नरक लोग जल्दी जा सकते
हैं, ये फायदा नहीं है, ऐसे उनको बताओ। ऐसे ऐसे हमारे भक्तों ने नाटक किया था कि सिगरेट पीने के फायदे क्या क्या है। तो मैं पीछे खड़ा था, जानबूझ के है वो ड्रामा के समय, नाटक के समय मैं पीछे गया। हाँ, ये बहुत साल पहले की बात है। अरे हमते के बाद कोई थे क्या उससे उधर? हाँ, तो होता तैवेले ते नाटक झाला होता, तैवेले होता तिकड़े। हाँ, तो मैं पीछे जाके खड़ा रहा कि लोग कैसे देखते हैं इस नाटक को, खास करके जो तरुण लोग हैं वहाँ के वो कैसे रहते हैं। तो थोड़े तरुण लोग आमटे के उधर खड़े थे पास में, तो चुपचाप मैं उनके पास में जाके खड़ा हुआ। उनको पता नहीं चला कि मैं खड़ा हो करके, मुझे उनका बातचीत सुनना था कि वो क्या बोलते हैं। तो जब भी ड्रामा चल रहा था, ख़त्म हो गया, वो लोग चुपचाप देख रहे थे। फिर बाद में एक ने दूसरे को कहा, ये हरे कृष्ण वाले होशियार है था। ये नाटक ऐसे सब करने से उसका प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर। नाटक भी बहुत शक्तिशाली एक माध्यम है, हाँ, संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आप सब अच्छे हैं ना, ठीक ठाक है? अभी कितने कितने अभी पढ़ाई कर रहे हैं, अभी स्कूल कॉलेज में कौन कौन जा रहे हैं? स्टार्ट नहीं हुआ अभी, कभी शुरू होना है? जनवरी।